मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स में 136 नए स्थानीय कोरोना वायरस मामले। ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सा नियामक ने 12 से 16 साल के बच्चों के लिए फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन को दी मंजूरी और टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज रात। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है क्योंकि इसके दैनिक कोरोना वायरस के आंकड़ों में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। राज्य ने 136 नए स्थानीय मामले दर्ज किए हैं और समुदाय में इसमें से कम 53 संक्रामक थे। सिडनी में एक 99 वर्षीय व्यक्ति की कोविड से मृत्यु हुई है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चेंट का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स अब राष्ट्रीय टीकाकरण रणनीति के प्रयासों को वायरस से सबसे अधिक प्रभावित दक्षिण पश्चिम सिडनी के क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित करने के लिए ध्यान दे रहा है।
The group of workers that keep the society going is this group of workers in the 20 to 49 year old age group in southwestern Sydney. Under 40s would not have been routinely eligible for vaccination. In terms of Pfizer, and what I've recommended to government is we urgently do mass vaccination of those workers to stem the transmission risk.
Stay at home order को कंबरलैंड और ब्लैकटाउन के नए स्थानीय सरकारी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि निवासी अपने घरों को काम के लिए नहीं छोड़ सकते जब तक कि वो अधिकृत न हों। प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लियन का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स का दायित्व है कि वो देश में वायरस को रोकने में हर संभव काम करे।
We need to get at least the first jab for as many people as we can in those affected communities as possible. And that's why we're asking for a refocus of the national vaccination strategy. We've already put some requests in, which we understand are being considered. But we need a refocus. That means using all vaccines available, including the AstraZeneca.
ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन ने सिडनी की स्थिति को देखते हुए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग के बारे में सलाह की समीक्षा करने का आह्वान किया है। ऑस्ट्रेलियन तकनीकी सलाहकार समूह ने सिफारिश की है कि 60 वर्ष से कम आयु के ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए फाइजर पसंदीदा टीका है। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अब इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। AMA के अध्यक्ष उमर खुर्शीद का कहना है कि पर्याप्त फाइजर वैक्सीन नहीं है और 40 साल से कम उम्र के बच्चों पर एस्ट्राजेनेका का उपयोग करना सिडनी को अपने लॉकडाउन से बाहर निकलने का मौका देने का एकमात्र तरीका है।
So what we are suggesting to Otago is that the settings in Sydney are different, the reality is different, and it may be time for clear advice to all young Australians in Sydney that AZ is a very safe and effective vaccine, and it's the best way to help Sydney get out of this current crisis.
इस बीच विक्टोरिया देश भर में फैलने वाले वायरस को रोकने के लिए महानगरीय सिडनी के आसपास रिंग ऑफ स्टील लगाने का आह्वान कर रही है। पिछले साल विक्टोरिया की दूसरी लहर के दौरान इसी रोकथाम उपाय का इस्तेमाल किया गया था और सभी मेलबर्न निवासियों को क्षेत्रीय क्षेत्रों और अंतर्राज्यीय यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। विक्टोरियन प्रीमियर डैनियल एंड्रूज का कहना है कि वो इसे आज राष्ट्रीय कैबिनेट में पेश कर रहे हैं।
If there is a national emergency, and I'm not doubting that for a moment in Sydney, then it is a national responsibility. The Sydney siders are locked in to Sydney. We need a ring of steel around Sydney so that this virus is not spreading into other parts of our nation. Let's focus on fixing what's going on in Sydney. Let's focus on not spreading what's going on in Sydney across the rest of our country.
और विक्टोरिया ने 14 नए स्थानीय कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं जो सभी मौजूदा प्रकोप से जुड़े हैं। नए मामलों में से 10 अपने पूरी संक्रामक अवधि के दौरान संगरोध में थे। अन्य 4 मामलों में से 1 का साक्षात्कार होना बाकी है। डैनियल एंड्रूज का कहना है कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या मंगलवार रात को योजना के अनुसार लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल इस समय हालात उत्साहजनक हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 नया कोविड-19 मामला दर्ज किया है जो एडिलेड के उत्तर में तथाकथित सुपर स्प्रेडर वाइनरी में से एक है। ये नया मामला पहले से ही अलगाव में था। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 23,500 से अधिक परीक्षण परिणामों में से ये एक सकारात्मक परिणाम है। प्रीमियर स्टीवन मार्शल का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद लॉकडाउन को कम किया जा सकता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया से संवाददाता पीटर डॉरथी ने बताया।
The new infection is a man in his 60s who attended what authorities describe as a super spreading event at a winery in Adelaide's north. There are now 8 cases linked to the venue. The man initially tested negative but developed symptoms during his quarantine period. It comes as the state processes a record of 23,600 tests. About 100 contacts linked to the winery and another high-risk site have been moved into many hotels. Premier Stephen Marshall says results so far indicate the lockdown could be wound back after 7 days, but he says restrictions will be stepped down gradually. Peter Doherty, Adelaide.
ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल रेगुलेटर ने 12 से 16 साल के बच्चों के लिए फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने चैनल 9 के द टुडे शो में बताया कि चिकित्सीय सामान प्रशासन यानी TGA ने उस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए टीके की मंजूरी दी थी। उनका कहना है कि 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर के टीकों के लिए अगले सप्ताह के अंत तक अंतिम हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।
The United States is currently vaccinating 12 to 15 year olds, and we have followed the medical processes throughout. And so that's why first step, Therapeutic Goods Administration, that's a green light. Second step, the Australian Technical Advisory Group on Immunisation, they're expected to make a consideration. But right now, this vaccine is being used in the US for 12 to 15 year olds, and so they'll make that careful consideration. And if it's a double green light, then we'll make sure that it's available.
श्री हंट का कहना है कि सरकार को उम्मीद है कि इस साल के अंत में स्कूलों के माध्यम से उस आयु वर्ग के सभी बच्चों को टीका लगाया जाएगा। जनवरी में TGA ने 16 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी थी। इस बीच 40 वर्ष से कम आयु के वयस्कों को अभी भी सितंबर या अक्टूबर तक फाइजर के टीके प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। न्यूजीलैंड ने ट्रांस तस्मन ट्रैवल बबल को कम से कम 8 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। आज रात 11:59 से ऑस्ट्रेलियन लोग अब न्यूजीलैंड में संगरोध मुक्त प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। पहले न्यू साउथ वेल्स पर एक विराम और अब विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पर भी वही स्थिति पर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का कहना है कि ये ठहराव ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के लगभग आधे हिस्से पर लग जाते हैं।
In the view of our health officials, there is greater risk now from the Delta variant than there was when we opened the quarantine-free travel arrangement with Australia. It is the government's duty to keep New Zealanders safe from COVID-19, and we continue to believe that the strongest health response is also the strongest economic response.
इसकी पूरी जानकारी sbsnews.com.au और SBS World News पर शाम 6:30 बजे उपलब्ध है। क्वींसलैंड में एक नए कोविड-19 मामले का पता चला है और ये है एक क्वांटस फ्लाइट अटेंडेंट जो राज्य भर में कई उड़ानों में रही है। ब्रिस्बेन महिला ने डेल्टा संस्करण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। डिप्टी प्रीमियर स्टीवन माइल्स का कहना है कि वो संभवतः 11 जुलाई से संक्रामक थी। उसने 11वीं और 13वीं जुलाई के बीच ब्रिस्बेन, ग्लैडस्टन, लॉन्गरीज और हर्बे बे के बीच 6 उड़ानें भरीं। श्री माइल्स का कहना है कि ये आवश्यक है कि उन उड़ानों के यात्रियों का शीघ्र से शीघ्र परीक्षण किया जाए। और भारत जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल देर रात तक अखनूर के कानाचेक सेक्टर के सीमांत इलाके गुड़ापट्टन में एक ड्रोन को मार गिराया है। NDTV के समाचार के अनुसार इस ड्रोन में 5 किलो IED बंधी हुई थी जिसे पुलिस ने बरामद किया है। आसपास के इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बताया गया है कि अखनूर के कानाचक सेक्टर में सीमा से सटे गुड्डापट्टन में रात के अंधेरे में ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया। जैसे ही ये ड्रोन पास आया, तैनात पुलिस जवानों ने गोली चलाकर इसे जमीन पर गिरा दिया। DSP वरुण जंडियाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रोन की मदद से इस IED को हमलावरों तक पहुंचाया जाना था। सुरक्षा बलों का मानना है कि ये IED जिन लोगों तक पहुंचाई जानी थी वो आसपास के इलाकों में ही मौजूद हो सकते हैं। जैसा कि विदित है, पिछले 21 दिनों के दौरान जम्मू और सांबा जिले के ड्रोन की ये 10वीं घटना है। पिछले सप्ताह बुधवार को भी एक ड्रोन को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 बार मंडराते हुए देखा गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले काफ़ी दिनों से जम्मू जिला के सीमांत इलाकों में इन ड्रोन्स को देखे जाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 73 सेंट और भारत के 54 रुपये 87 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में, जापान की राजधानी में आपातकाल की स्थिति के बीच टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न समय के अनुसार रात 9 बजे शुरू होगा। उद्घाटन समारोह से पहले एक वीडियो संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने खेलों की मेजबानी के लिए जापान के लोगों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रों की परेड में कम एथलीट्स होंगे और भाग लेने वाले 950 गणमान्य व्यक्तियों में से केवल 150 ही जापानी होंगे। समापन समारोह रविवार 8 अगस्त को होगा और इसके बाद 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 10 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में कुछ बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री न्यूनतम 7 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 13 डिग्री न्यूनतम 4 डिग्री। कैनबरा में बौछारें, अधिकतम तापमान 10 डिग्री न्यूनतम 3 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री न्यूनतम 10 डिग्री। ब्रिस्बेन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 23 डिग्री न्यूनतम 13 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।